Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Vrindavan, Vyari Radha Vrindavan, Vyari Radhe. Jaya Radha, Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radhe. Jaya Gaurang Nitai, Gaurang Nitai, Gaurang Nitai, Jaya Gaurang Nitai. Jaya Jaya Prabhupad, 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 Prabhupad. Nitai Gaur Haribol, 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 Nitai Gaur. Gaur Premanandi, Harinam Sankirtana Kiche, Srila Prabhupada Kiche, Omagyanti Mirandasya Gyananjana Shilakaya, Chakshurun Militamena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yutapadakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamsha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Desha Tarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivastadi Gaur Bhaktarunda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Taj Saptaik Rivariya Satsang mein aap sabka swagat hai Thamaj Navratri jo utsav hum kal se manane ja rahe hain Bharat varsh mein और अभी भारतवर्ष में नहीं दुनिया भर में जो है ये उत्सव बड़ा फेमस है प्रसिद्ध है और विशेषकर ये जो नवरात्रि है इसमें क्या है देवी की पूजा होती है और यहां नवरात्रि जो नौ दिन जो है यहां पर व्रत होता है उत्सव होता है और हम सब जानते हैं कि ये पहले दिन से जो उत्सव शुरू होता है तो अंत में दसवें दिन क्या होता है दशहरा होता है मतलब 9 दिन जो है उत्सव चलता है, और इसमें कई अलग अलग लीलाएं हैं। उसमें युद्ध की भी लीला है। हम सबको पता है कि जब युद्ध शुरू करना था कहाँ पर, रामायण में। रामायण में जब युद्ध शुरू करना था तो भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जब लंका पहुंचे तो प्रथम उन्होंने दुर्गा देवी की पूजा की शुरुआत में, क्योंकि को पता है कि ये दुर्गा जो है स्वयं कौन है, पार्वती है, माता पार्वती है। और किसके साथ युद्ध है, रावण के साथ युद्ध है। और रावण कौन है, भगवान शिव का बड़ा भक्त है। तो माता देवी की पूजा करके श्री राम लक्ष्मण जो है माता देवी से कहते हैं कि आप अपने पति को समझाओ, बराबर ना, आपके पति को समझाओ, क्योंकि आपके पति का जो भक्त है रावण, इसके साथ हमें युद्ध करना है। तो और तब से वो नियम है, जब घर में बोल देते हैं कि ये करना है, इनको परमिशन दे तो कोई मना नहीं करते घर में, बराबर ना। एक बार पत्नी ने बोल दिया कि करना है तो करना है। तो वैसे यहाँ पर श्री रामचंद्र भी दुर्गा देवी को कहते हैं कि हमें रावण के साथ युद्ध करना है, क्योंकि उनको पता है रावण एक बड़ा पंडित है, ब्राह्मण है, सारे वेदों को जानता है, लेकिन खाली ज्ञान जो है पूर्ण नहीं होता है। ज्ञान के साथ चरित्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे साक्षर कहते हैं ना, तो साक्षरा, इसका उल्टा करो तो क्या होता है, साक्षरा, उसका उल्टा करो तो क्या होता है, राक्षसा। तो ज्ञान है लेकिन ज्ञान के साथ अगर चरित्र नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी 13वां जो अध्याय है उसमें कई गुणों का वर्णन करते हैं। जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। ज्ञान के साथ गुण जो है बहुत आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर भगवद गीता में भी वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामय वय प्रपद्यंते माया मेताम तरंतते। ये कौन है, दैवी ईशा गुणमयी, जो देवी है, जो दैवी शक्ति है, योग माया है, योग माया और महामाया जो है, जब भगवत धाम में, वैकुंठ में, गोलोक धाम में जब भगवान की लीलाओं का आयोजन करना है, भगवान को आनंद देना है, तो वो जो लीला कार्य करती है, लीला शक्ति, वो योग माया है। कि वही योग माया जो है इस भौतिक संसार में जब भौतिक जीवों को जो बद्ध अवस्था में है, जो आहार निद्रा भय मैथुन इसमें लगे हैं, महाभारत में वर्णन आता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी समान है, धर्मे तेषाम अधिक विशेष धर्मेनहीन पशु भी समान है। खाली खाना पीना सोना मैथुन करना इसी के लिए जीवन है, तो जीवन क्या पशु समान है, बराबर ना। पशु जो बाहर कुत्ते बिल्ली जो गाय भैंस सब जो है वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं, सब कुछ करते हैं। इतना ही फर्क है मनुष्य में, उनमें क्या है, वो रास्ते पे है, बाहर है, और मनुष्य घर में है, फर्क इतना ही है। लेकिन मनुष्य में और पशु में फर्क है, धर्म ही तेषाम अधिक विशेष धर्मेन ही न पशु भी समान। धर्म का आचरण करना, भगवान की भक्ति करना, ये पशु और मनुष्य में फर्क है, शास्त्र जो है व्यक्ति समझ सकता है। तो यहाँ दैवी ईशा गुणमयी, भगवान कहते कि जो दैवी शक्ति है, जो माया है, महामाया है, मम माया, कृष्ण कहते मेरी माया है। क्यों कहते मेरी माया, क्योंकि भगवान से ही आती है। इसलिए कृष्ण लीला में है देखते हैं कि भगवान को जब यहाँ कृष्ण लीला प्रकट करनी है तो पहले वो क्या करते हैं, बलराम जी को, तो अनंत शेष जो बलराम जी आने हैं, क्यों वो कहते कि देखो पिछली बार मैं आपका छोटा भाई था, तो मैंने देखा आप 14 साल के लिए वनवास में गए, रामलीला में छोटे भाई थे अनुशेष लक्ष्मण, तो कई सारे दुखदायक चीजों से उनको गुजरना पड़ा, उनको मतलब श्री राम को जो दुख होता है वो सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो कहते हैं कि देखो पिछली बार छोटा भाई था तो 14 साल वनवास गए तो मैं रोक नहीं पाया आपको, सीता को अपने वन में भेज दिया उनको रोक नहीं पाया, लेकिन इस बार मुझे जो है छोटा भाई नहीं बनना है, बहुत सुनना पड़ता है, तो बड़ा भाई बनकर आना है। तो कृष्ण कहते अच्छा बड़ा भाई बनना है, कोई बात नहीं, तो वो तो भगवान है कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने योग माया को बुलाया, वही जो दैवी शक्ति है योग माया, उनको बुलाया और कहा कि आप नीचे जाओ और देवकी के गर्भ में जो गर्भ है उसको रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित करो, देवकी के गर्भ से उसको रोहिणी के गर्भ में ले आओ। तो ये अनंत शेष कहाँ पहुंचे, देवकी के गर्भ में, सातवां गर्भ है देवकी का, वहां पहुंचे, उसको कहाँ करना आपको रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित करना है, और फिर बाद में यशोदा के गर्भ में जाकर आपको रहना है और मेरे बहन के रूप में आपको प्रकट होना है। तो देवी कौन है, भगवान कृष्ण के बहन बनकर यशोदा के गर्भ से वो प्रकट होती है, ये देवी है, योग माया है, और वही योग माया जो है, इसलिए आगे भी नवे अध्याय में भी कहते हैं कि महात्मनस्त माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रित, जो महात्मा गण है वो किस में रहते हैं, दैवीं प्रकृति, जो योग माया है, योग माया और महामाया, इस भौतिक संसार में जो मोह माया हम देखते हैं कि कौन से महामाया है, लेकिन भगवत धाम में जो है वो योग माया के रूप में भगवान देवी जो है कार्य करते हैं। और क्या उनका कार्य है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जब वर्णन करते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ये जो इस भौतिक संसार में दुर्गा है, दुर्ग मतलब बड़ा कठड़ा होता है, जेल का जो बड़ी दीवार होती है ना, दुर्ग कहते हैं, तो वैसे ये जो दुर्ग है भौतिक संसार को दुर्ग बताया गया है, ये जेल जैसा है। इस संसार में जो भगवत धाम में जीव है, वैकुंठ में, गोलोक धाम में, वहां वो क्या करते हैं, बंद करते हैं, कहते हैं हमको भगवान बनना है, हमारे जैसा हमको व्यवहार करना है। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, जैसा आपकी इच्छा है, अगर आपको भोक्ता बनना है, भगवान बनना है, तो इस संसार में जाओ, जहाँ इस संसार में सब कुछ निश्चित है क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन इस संसार में व्यक्ति जीव जो है सोचता है कि मैं भगवान, मैं कर्ता कर्विता हूँ, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कहर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है लेकिन हम समझते हैं कि मैं करता हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन ये दुर्गा देवी जो इस संसार की क्या है, सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ वो कार्य करते हैं, ये भगवान की बहिरंग शक्ति है, वही शक्ति जो है जिसकी शक्ति की सब लोग इस संसार में देवी के रूप में पूजा करते हैं। और ये जो देवी है, ब्रह्मा जी कहते कि मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनकी इच्छा के अनुसार दुर्गा स्वयं आचरण करते हैं। तो इस संसार के जो प्रलय स्थिति सारा जो आयोजन है नियोजन है उन दुर्गा देवी देखती हैं, और भगवान की इच्छा अनुसार भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य का वो प्रयोजन करती हैं। तो जब ये भगवान कृष्ण योग माया को बुलाते हैं तो कहते हैं कि अर्चिषन्ति मनुषास्त्वा सर्व काम वरेश्वरीं धूपोपबरा हरिभिः सर्व काम वरप्रदम। तो क्योंकि उन्होंने बड़ा महान कार्य किया, क्या किया है, देवकी का गर्भ जो है रोहिणी के गर्भ में उन्होंने स्थलांतरित किया है, तो कि उनको वर देते हैं। यहाँ पे भगवान जो है मैनेजमेंट में सिखाते हैं कि जब किसी से हम कुछ कार्य करना चाहते हैं तो कुछ बख्शीश देना चाहिए, तो यहाँ किसी से कुछ कार्य करना है तो कुछ हमें भेंट देनी चाहिए, बख्शीश देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मांगते इसलिए नहीं, लेकिन कार्य करते हैं तो हमें कुछ उनको, या स्तुति हो शब्दों के द्वारा हो या वस्तु के, कुछ ना कुछ हमें उनको देना चाहिए। तो यहाँ पर भी देवी योग माया जब एक कार्य करते हैं, बोलते करने के लिए, तो भगवान उनसे कहते हैं कि अर्चिषंति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीम। आप ये कार्य करने के बाद क्या होगा, आप इस मनुष्य लोगों में वर देने में प्रसिद्ध हो जाओगे। लोग जो है आपके जो विग्रह है, मूर्ति है, उसको फूल धूप अलग अलग प्रकार से भोग लगाएंगे, आपकी पूजा करेंगे, और आप जो है क्या करेंगे, सर्व काम वरेश्वरी, लोगों की जो इच्छा है वो पूर्ण करने में आप सक्षम बनेंगे। कौन, भगवान ही दुर्गा देवी को योग माया से कहते हैं, और आप नीचे जाकर जो है अलग अलग रूपों में प्रसिद्ध हो जाओगे। क्या कहते हैं, नाम धेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि, या नराभुवि, इस भूतल पर जाकर आप क्या होगे, प्रसिद्ध होगे अलग अलग नामों से, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्ण साधवी काण्यकेति च माया नारायणिशानि शारदित्यकंति च। ते इसमें भगवान कहते कि अब अलग अलग रूपों में अलग जगह जगह जो है आप प्रसिद्ध हो जाओगे। तो वही दे योग माया जो है देवी के रूप में आकर इस संसार में अलग अलग जगह में प्रसिद्ध होते हैं। विंध्याचल में भद्रकाली कलकत्ता में है, बनारस में विंध्याचल है, फिर उत्तर भारत में शारदा है, जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी है, उड़ीसा में विमला देवी है, कन्याकुमारी में काण्यकेति है, मुंबई में बुम्बा देवी है, और कोल्हापुर में महालक्ष्मी। अलग अलग जगह पर जो है आप जाकर इस रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे और लोगों को वर देने में आप सक्षम होगी। इसलिए हम देखते हैं कई लोग जो है देवी की पूजा करके अपने मनोवांछित चीजों को प्राप्त करते हैं, लेकिन देवी जो है किससे प्रसन्न होती, ये भी हमें जानना चाहिए। अभी हम नवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं, 9 दिन जो है अलग अलग प्रकार के उत्सव होंगे, वहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे, लेकिन खाली नाचना गाना इतना ही पूर्ण नहीं है। कुछ किसी भी उत्सव में नाच गान होना चाहिए, लेकिन उतना ही पूरा नहीं है। कोई भी उत्सव जो है उसमें चार चीज़ें होती हैं, कोई भी उत्सव में चार चीज़ें होती हैं। एक होता है सजावट, कि कोई भी जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नवरात्रि, गणेशोत्सव, उसमें क्या होता है, सजावट होती है, डेकोरेशन होता है। तो दूसरा जो है, जो भी उत्सव हम लोग मना रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। दूसरों कहते हैं कथा, प्रवचन, क्योंकि अगर हम उत्सव किस लिए मना रहे हैं, उसका महत्व क्या है, वो जाने बिना अगर हम लोग मनाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, वो मैकेनिकल हो जाता है। धीरे धीरे करने के लिए इसलिए करते हैं, क्यों कर रहे हैं ये पता न होने की वजह से लोग जब पूछते हैं तो हम लोग भी उनको बता नहीं पाते कि क्यों हम लोग उत्सव मना रहे हैं। जैसे एक बार एक दो लोग नीचे काम कर रहे थे, और वो कार्य क्या चल रहा था उनका, एक खड्डा खोद रहा था, दूसरा आकर उसमें मट्टी डाल रहा था। सुबह 8 बजे से काम चालू हुआ, 12 बजे तक वही काम चल रहा है, एक खड्डा खोदता है, दूसरा आकर मट्टी डालता है, खड्डा खोदता है फिर मट्टी डालता है। वो फर्स्ट फ्लोर पे आदमी बैठा था, वो नीचे उतरा 12 बजे, पूछता है, कह रहे भाई तुम लोग क्या कर रहे हैं, एक खड्डा खोदता है दूसरा मट्टी डाल रहा है, क्या चल रहा है? तो कहते कि देखो हम लोग का 3 लोग का टीम है, 3 लोग का टीम है, क्या एक पहला आदमी खड्डा खोदेगा, दूसरा पेड़ लगाएगा, और तीसरा उसमें मट्टी डालेगा, लेकिन एक आदमी आया नहीं, हम लोग का काम चल रहा है। तो इसे कहते हैं श्रम एव हि केवलम। तो हमें जो है हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है। जब हम देवी दुर्गा पूजा करते हैं तो देवी कौन है, उससे उससे वो किससे प्रसन्न होती है, क्या किस क्या चीज़ें हम उनको अर्पण कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी जो है होनी बहुत जरूरी है। दशहरा है, क्यों दशहरा मना, दिवाली है, क्यों दीपावली मना रहे हैं, गणेश उत्सव क्यों मना रहे हैं, जन्माष्टमी, इसके बारे में जब कथा सुनेंगे, जैसे दिवाली में इतनी सारी कथा है, पहला दिन जो नरक चतुर्थी होते, नरकासुर का भगवान कृष्ण ने वध किया था, तो नरक चतुर्थी है, धन त्रयोदशी है, जिसमें भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद जो है लाए, वो धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, तो वो समुद्र मंथन की कथा सुननी है, धन्वंतरी भगवान कैसे प्रकट हुए, भगवान कृष्ण नरकासुर का कैसा वध किया, फिर बाद में लक्ष्मी पूजन है, लक्ष्मी नारायण की कथा सुननी है, फिर बाद में उस दिन भगवान कृष्ण ने मटकी फोड़ी थी और माता यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से बांधा था, इसलिए वो दामोदर बने, तो कथा वो जो लीलाएं जो है दामोदर की कुछ दिन हुई, दिवाली के दिन हुई थी, माता यशोदा ने दिवाली के दिन कृष्ण को बांधा था, तो उस दिन सुनना है इस गोवर्धन लीला है, गोवर्धन पूजा है, तो हम दिवाली में बस लाड़ू पकौड़े करंजी ऐसे खाने में दिन चले जाते हैं और दिवाली हो गए। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो है इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, इसके बारे में सुनना चाहिए। वैसे नवरात्रि भी जो है इतना पवित्र उत्सव है, इतना भव्य उसका उत्सव है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि नवरात्रि में क्या होता है, देवी की आरती हो गई, गरबा का म्यूजिक चालू हो गया, सब लोग का डांस गए, वो चले गए, क्यों कर रहे हैं, क्या किस लिए हमें ये करना चाहिए। तो साथ साथ देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं, उनको पता है कि जो महिषासुर जो था एक असुर था, महिषासुर ये दानव जो है ये भैंस के रूप में था, इसने बहुत कड़ी तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, और ब्रह्मा जी से उन्होंने, क्योंकि हर कोई जो असुर होता है उसकी एक ही इच्छा होती है, क्योंकि उसको वर तो बहुत प्राप्त होते हैं, शक्ति प्रदर्शन सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उनको क्या रहता है, अमर बनना रहता है, मरना नहीं है। हिरण्यकश्यप भी इतना सब कुछ था, तीनों लोगों का राजा था, सब कुछ था, लेकिन उसको क्या था, अमरत्व चाहिए था, अमर बनना था, वैसे ये सबको अमर बनना रहता है, मरना नहीं है। और प्रॉब्लम वही है कि संसार में जो भी आता है उसको मरना तो है, जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इन संसार में जैसे हम लोग कहीं पिकनिक में जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो जाते समय रिटर्न टिकट लेकर जाते हैं, है ना, चार दिन कहीं गए हम लोग तो जाते समय रिटर्न टिकट लेकर जाते हैं, तो इस संसार में जब आए हैं तो आते समय रिटर्न टिकट हम लोग लेकर आए हैं, तो खाली किसी का 50 साल के बाद है, किसी का 80 साल के बाद है, किसी का 20 साल के बाद, लेकिन रिटर्न टिकट सबके हाथ में है। तो इस प्रकार से इस संसार में, लेकिन जो अज्ञानी होते जीव, जो व्यक्ति इस संसार में इस भौतिक शरीर में आसक्त हो जाता है कि ये शरीर मैं हूँ, इस शरीर के द्वारा जो प्राप्त की चीजें हैं ये मेरी है, और ये आसक्ति की वजह से इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन ये याद रहना चाहिए कि इस शरीर का पोषण के लिए हम लोग जो चीज़ें धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, ये सारे नाशवान हैं। हम लोग जो खाते हैं शरीर का पोषण के लिए, वो अन्न जो अगर भोजन हमने दो दिन बाहर रख दिया सड़ जाता है, जो भोजन शरीर को पोषण करने के लिए खाते हैं वो दो दिन बाहर रख दिया तो सड़ जाता है, तो जो सड़ने वाली चीज़ें हम लोग शरीर को देते हैं, शरीर भी तो सड़ना ही एक दिन, इसका तो नाश एक दिन होना ही है। तो इसलिए एक ज्ञान, ये जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, और जानकारी कब मिलते हैं, जब उत्सव में हम आते हैं, कथा सुनते हैं, चर्चा करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ये दूसरा भाग होता है उत्सव का, सजावट डेकोरेशन, दूसरा कथा, तीसरा हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हरिनाम संकीर्तन कलयुग का युग धर्म है। इसलिए कोई भी सत्संग कार्य जो आध्यात्मिक कार्य है, देवताओं की पूजा हो, भगवान की पूजा हो, तो कोई भी कार्य जो है हरिनाम के बिना पूर्ण नहीं होता है। तो हरिनाम कोई भी उत्सव मना रहे हैं, जैसे हम लोग गणपति भी आरती गाते हैं, फिर देवी की भी आरती गाते हैं, विठल की आरती गाते हैं, अंत में हम लोग क्या बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो मतलब हरिनाम अंत में हरिनाम आना ही है, हरिनाम के बिना कोई महत्व कार्य पूर्ण नहीं होता है। और तीसरा जो है, चौथा जो है अन्नदान, कुछ भी हम लोग उत्सव मनाते हैं तो अंत में प्रसाद वितरण होना चाहिए, तभी अपना जो उत्सव है पूर्ण होता है। तो जो दुर्गा देवी है ये महिषासुर मर्दनी के, तो जो असुर है महिषा ये भैंस के रूप में है, उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर जब पूछते हैं तो क्या चाहिए वर क्या चाहिए, तो कहते हैं मुझे अमर बनना है। बोले वो तो नहीं हम दे सकते हैं क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूँ। ब्रह्मा जी का भी आ ब्रह्मा भूणालो का पुनरावर्ति रचना, ब्रह्म लोक तक भी आदमी जाता है तो फिर वापस को वापस आना ही है। तो कहते वो तो मैं भी अमर नहीं हूँ तो मैं आपको वो वर नहीं दे सकता। लेकिन फिर वो कहते कि अलग अलग लिस्ट, इससे मुझे मृत्यु नहीं होना चाहिए, इससे मृत्यु नहीं होना चाहिए, देव से नहीं दानव से, अलग अलग प्रकार के हिरण्यकशिपु जैसे लिस्ट मांग लेता है। फिर जब ये स्त्री का वर्णन आता है महिला का, नहीं नहीं इससे मुझे कोई डर नहीं है, वो क्या मुझे मार सकते। उसने क्या किया, स्त्री को एक माता को उसने क्या किया, अंडर एस्टिमेट किया और मृत्यु जो है किससे हुआ, देवी से हुआ। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि जो आपका वैदिक संस्कृति है जो समाज है इसमें स्त्रियों का इतना महत्व नहीं देते हैं, ये पुरुष प्रधान संस्कृति है, पुरुषों का चलता है। ऐसा होता तो नहीं लेकिन लोग कभी कभी लोग बोलते ताने मारते हैं कि पुरुष प्रधान संस्कृति है ना। लेकिन जैसे हमारा अगर भारत का जो पूरी व्यवस्था है तो ये जो मंत्रिमंडल जो होता है उसमें तीन प्रमुख जो भाग होते हैं, जो घटक होते हैं कौन से होते हैं, एक फाइनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं, एक फाइनेंस, डिफेंस और एजुकेशन। मंत्रिमंडल में ये तीन चीज़ें जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। डिफेंस किसके हाथ में है, जिसके लिए बड़ा वर्चस्व रहता है, कंपटीशन रहता है कि डिफेंस किसके, गृह खाता किसके पास जाएगा, अर्थ खाता किसके पास जाएगा। और अपने 33 करोड़ देवताओं में तीनों खाते किसके पास है, फाइनेंस किसके पास है, लक्ष्मी के पास है, और डिफेंस किसके पास है, संरक्षण खाता किसके पास है देवताओं में, दुर्गा देवी के पास है डिफेंस संरक्षण खाता। और एजुकेशन किसके पास है, शिक्षण माता सरस्वती। तो तीनों किसके पास है, महिलाओं के पास है ना। कौन कहते हैं प्रधान पुरुष प्रधान संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में भी तो प्रमुख खाता जो है ये किसके पास है, देवी के पास है, लक्ष्मी के पास है, सरस्वती के पास है, दुर्गा के पास है। तो जब ये महिषासुर का इतना आतंक बढ़ गया, इसको रोकना बहुत देवताओं के लिए, ब्रह्मा जी के लिए भी बड़ा कठिन हो गया। तभी ब्रह्मा जी सारे देवता मिलकर देवी के पास आते हैं, हे माते इस भौतिक संसार में जो महिषासुर की वजह से जो आतंक फैला हुआ है इसको आप ही हमको बचा सकते हैं। और सारे उनको जब देवी को शरण आते हैं तो माता दुर्गा जो है महिषासुर का वध करते हैं। तो इसलिए उनका ये जो युद्ध चला था महिषासुर के लिए ये 9 दिन चला था, इसलिए नवरात्रि है। और रामायण में भी जो भगवान श्री राम लक्ष्मण जब पूजा करते हैं देवी की युद्ध के शुरुआत में, तो 9 दिन युद्ध चला था और अंत में जो है 10वें दिन जो है दशहरा होता है, विजय उत्सव होता है, विजयादशमी होती है। तो कभी कभी लोग कहते कि देखो श्री राम ने शिव जी की पूजा की थी, श्री राम ने दुर्गा की पूजा की थी, ये श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान में वो जो भाव है, भगवान श्री रामचंद्र क्यों शिव जी की पूजा करते हैं, क्यों दुर्गा की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को ज़्यादा श्रेय देते हैं। जैसे महाभारत में जब महाभारत का अंत हुआ तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि अर्जुन आप रथ से उतरो, तो अर्जुन कहते कि पहले आप, क्योंकि रोज भगवान कृष्ण पहले उतरते थे। तो बोले आप उतरो। तो कृष्ण कहते नहीं अर्जुन आप उतरो। तो मैं कहता आप उतरो। अरे अर्जुन मैं कहता हूँ आप उतरो नीचे। जैसे अर्जुन उतरे और भगवान श्री कृष्ण उतरते हैं, पूरा रथ का ध्वंस हो गया। इतना बड़ा स्फोट हुआ कि चितरे चितरे हो गए पूरे रथ के। तो अर्जुन देखते रह गए, क्या बात है, ऐसा क्या हुआ था इसमें, अभी तो कुछ दिख तो नहीं रहा था। तो भगवान कृष्ण कहते हे अर्जुन, ये जो 18 दिन युद्ध चला उसमें अनेक लोगों ने दिव्यास्त्र इसके लिए फेंके थे। कब का ये रथ उड़ना था, कब की इसके चितरे बनने थे, कि मैं रथ पे बैठा था इसलिए रथ को कुछ हो नहीं रहा था। तो मतलब युद्ध किसने जीताया, भगवान कृष्ण। लेकिन सारा युद्ध का श्रेय किसको देते हैं, अर्जुन को देते हैं। तो वैसे भगवान श्री रामचंद्र जो है ये दुर्गा को श्रेय देते कि आप की पूजा करते हैं ताकि हम रावण को मारने जाए, क्योंकि रावण जो है शिवजी का बड़ा भक्त है और आने के बाद भी, युद्ध के बाद भी वो क्या करते हैं, शिवजी की पूजा करते हैं, शिवजी को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्तों को श्रेय देते हैं, अपने भक्तों को बड़ा उसका फल देते हैं। तो कई जगह पे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से देवी की, दुर्गा देवी की पूजा होती है। जैसे गोपियां जो है वृंदावन में एक महीने का व्रत रखती है, किसलिए, कात्यायनी देवी की पूजा करते, सारी गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं, किसलिए, कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। जैसे रुक्मिणी का जब ये विवाह हो रहा था, हम कुछ दिन पहले यहाँ डाकोर गए थे, डाकोर में जो मंदिर है, कौन सा मंदिर है, मंदिर में कौन छे, राजा रणछोड़ राय छे, तो कहते वहां पर रणछोड़ राय, कृष्ण का नाम है वहां पर रणछोड़। तो इस संसार में अगर कोई रण छोड़कर भाग के आता है तो इतना उसका कोई स्तुति नहीं करते, वंदन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण रण छोड़कर भागे, उनकी भी पूजा होती है, इसलिए वो भगवान है। इस संसार में अगर कोई रण छोड़कर भागता है, आज युद्ध छोड़कर पलायन करता है, तो उसको बोलता है क्या ये भगोड़ा है, रण छोड़कर भागा है। अभी भी कुछ साल पहले राजस्थान में कुछ जगह पे जो क्षत्रिय, वहाँ पर इसी नियम था या वहाँ का कल्चर था कि जब युद्ध के लिए जब घर का कोई व्यक्ति जाता है तो अगर वो वापस आता है तो पत्नी अंदर से पूछते दरवाजा खोलने से पहले कि घाव कहाँ पर है, आपको घाव कहाँ लगे हैं। तो अगर कहता है कि पीठ में घाव है तो दरवाजा खोलेगी नहीं वो। जब कहते हैं कि घाव छाती पे है तो दरवाजा खोलेगी, क्योंकि क्षत्रिय का वो नियम होता है कि वो युद्ध से भागे नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण युद्ध से भागे थे, क्यों, क्योंकि उनको पता था कि महाराष्ट्र से मुझे एक पत्र आने वाला है। उस रात को अगर मैं जरासंध और काल यमन के साथ युद्ध में जखड़ा रहा तो जो संदेश आने वाला है कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र कहाँ, कौंडिन्यपुर अमरावती, वहाँ पर भीष्मक महाराज रहते थे और भीष्मक महाराज की कन्या रुक्मिणी, जिन्होंने कभी भगवान को देखा नहीं था लेकिन सुना था भगवान के बारे में, चर्चा सुने थे। हम लोग क्यों कथा सुनते हैं, क्यों हरिनाम करते हैं, क्योंकि सुनने से प्रेम हमें हृदय में निर्माण होता है। यस्या वै श्रूयमाणाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पदे पुंसा कृष्ण शोक मोह भयापह। यस्या वै श्रूयमाणायाम, जब हम सुनते हैं श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भक्ति उत्पदे पुंसा, हृदय में भक्ति उत्पन्न होते हैं, स्वयमेव स्फूर्त्यदा। इसलिए सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो रुक्मिणी ने श्रवण किया था, इसलिए श्रवण करते करते ही नारद मुनि, पर्वत मुनि, अलग अलग ऋषि मुनि आते थे महल में भीष्म महाराज के, सुनते सुन के उनको भगवान कृष्ण से प्रेम हुआ। और जब उनका बड़ा भाई रुक्मी, इसकी इच्छा थी कि इसका विवाह शिशुपाल के साथ हो, किसकी इच्छा थी, रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी की। वो ऐसा नहीं कि अपने बहन के बारे में सोच रहे हैं। रुक्मी किसके बारे में सोच रहे हैं? अगर मैं शिशुपाल के साथ मेरे बहन की शादी करवा दूंगा तो क्या होगा? शिशुपाल के दोस्त जो है, भौमासुर है, जरासंध है, अनेक अनेक जो असुर है, ये सारे शक्ति जो है मुझे मिल जाएगी और मैं बड़ा राजा बन जाऊंगा। तो ये शक्ति प्राप्त करने के लिए या राजकीय कारण के लिए वो सोच रहा था, लेकिन शिशुपाल असुर वृत्ति का था तो रुक्मिणी की इच्छा नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने एक पत्र भेजा। वो जब उनको मिला भगवान कृष्ण, और पत्र जब पढ़ते हैं तो उसमें वो लिखते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं आपके और एक शारीरिक आकर्षण की वजह से मैं आपको चाहती हूँ, मेरा हृदय जो है आपको समर्पित है। मैं इस अपने मन में विचार भी नहीं कर सकते कि भौतिक संसार का जो जन्म मृत्यु में झगड़ा हुआ कोई जीव है उसके प्रति ये जीव समर्पित करो, या इंद्र भोग के लिए जीवन समर्पित करो, मेरी इच्छा नहीं है। मुझे तो आपके जो लीलाएं हैं उसको सुनकर जो प्रेम, एक मजा, मेरा हृदय जो है आपके प्रति समर्पित आकर्षित हुआ है, इस प्रकार से वो लिखते हैं। और एक क्षत्रिय है, राजकुमारी है, तो लिखते हैं कि जब आप मुझे लेने आएंगे तो कहाँ पर आना है, क्योंकि अगर आप राजमहल के पास आएंगे तो बहुत सैन्य रहेंगे, शादी का विवाह के सब तैयारी चल रही है, तो बहुत सर्व सामान्य लोग वहाँ पर रहेंगे। तो जब आएंगे तो वहाँ पे अगर युद्ध छिड़ जाता है तो कई सर्व सामान्य लोग मारे जाएंगे, और बहुत सैन्यों का पहारा रहेगा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी को। इसलिए मैं, हमारे परंपराओं में आता है कि शादी से पहले जो वधू है उसको देवी की पूजा करने जाना रहता है, गौरी की पूजा, गौरी मतलब पार्वती की पूजा करने के लिए जाना होता है। तो मैं युद्ध शादी के पहले यहाँ गौरी मंदिर में जाऊंगी, देवी के मंदिर में जाऊंगी, वहाँ पूजा करूंगी और वहाँ से आप मुझे ले जाना। तो हम देखते रुक्मिणी देवी भी देवी की, गौरी की पूजा करती है। तो यहाँ लेकिन इस सबका उद्देश्य, गोपी भी देवी की पूजा करते हैं, रुक्मिणी पूजा करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? कृष्ण हमें प्राप्त हो। और देवी को भी बड़ा ही अच्छा लगता है कि अगर हम कोई घर में मेहमान आते हैं तो उनको पूछते हैं कि आपको क्या सब्जी अच्छी लगती है, शाम को भोजन के लिए क्या बनाएं, मेहमान को भी पूछते हैं ना। जब हम गणेश उत्सव मनाते हैं या नवरात्रि मनाते हैं तो कभी देवियों को भी पूछ लेना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, गणेश जी की पूछ लेना चाहिए कि क्या अच्छा लगता है। वो क्या अच्छा लगता है कहाँ से बताएंगे? वो शास्त्र से बताएंगे, शास्त्र में उन्होंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है उनको क्या अच्छा लगता है। लेकिन वो हमने मैनुअल पढ़ा है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें लेते हैं, खरीदते हैं, लेकिन कैसा यूज़ करना है वो पता नहीं रहता है, वस्तुओं को खराब कर देते हैं। लेकिन मैनुअल पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से हम लोग उसको इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो वैसे मनुष्य जीवन में जब हम पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, तो उनका जीवन जो है, जैसे हमने देखा कि देवी जो है इस संसार का स्थिति, प्रलय, निर्माण सारी चीजों में कार्यरत है। किसकी आज्ञा से? भगवान की आज्ञा से वो कार्यरत है। तो उनके हाथ में जो हम त्रिशूल देखते हैं, त्रिशूल होता है ना, तो त्रिशूल किस लिए होता है? वो तीन ताप। ये जीव इस संसार में जो आया है वो तो असुरों से रक्षण तो करती है, लेकिन साथ साथ त्रिशूल के द्वारा इस संसार में जो जीव बद्ध है, जो इस संसार में मई मेरा करते करते लटके हुए है, मोह माया में बद्ध है, इस संसार में जीव क्या सोचता है कि मोह माया ने मुझे बांध कर रखा है, हमको किसी ने बांध कर नहीं रखा है, हम खुद ने बांध लिया है। जैसे एक बार एक कथाकार जो है कथा कर रहे थे और एक व्यक्ति सामने से आया, कहता कि मुझे छुड़ाओ, इस भौतिक संसार में मुझे माया मोह ने जकड़ के रखा है, महाराज मुझे मुक्त करो मुझे। तो महाराज ने देखा कि बहुत ही रो रहा है, बहुत ही चेष्टा कर रहा है, तो महाराज आसन से उठ गए और चलने लगे, कथाकार ही आगे उठकर चलने लगे। थोड़े मंदिर से थोड़ी दूर चले गए, वहां पर एक पेड़ था, तो जैसे महाराज गए तो उनके पीछे जो श्रोतागण गए वो भी उठ के चलने लगे। तो महाराज जैसे पहुंचे तो पेड़ के पास उन्होंने पेड़ को पकड़ा, ऐसा पेड़ को गले लगाया। और जैसे वो सब श्रोतागण आ गए तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मरे मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, पेड़ ने मुझे पकड़ा है, छुड़ाओ मुझे, पेड़ ने पकड़ा है। तो जो श्रोता था वो कहने लगे महाराज पेड़ ने आपको पकड़ा नहीं है, आपने पेड़ को पकड़ा है, आप जो आपके हाथ है उसको छोड़ दो, मुट्ठी को छोड़ दो तो आप खुल जाएंगे, पेड़ ने पकड़। वैसे इस संसार में किसी ने हमको पकड़ा नहीं है, घर ने हमको पकड़ा है क्या? हम कहते ये मेरा घर है। गाड़ी ने हमको पकड़ा है कि नहीं? ये मेरी गाड़ी है। गाड़ी ने पकड़ा नहीं है हम, ये मेरी गाड़ी है। तो वैसे है ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये सारा जो है हमने जकड़ के रखा है, उसने हमको पकड़ा नहीं है किसी ने। तो इस संसार में जब हम देवी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इस बंधन से मुक्त करो, और वो करती भी है। जैसे त्रिशूल के द्वारा, त्रिशूल के जो तीन ताप, त्रिशूल मतलब तीन ताप है, कौन से तीन ताप है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। तो ये तीन तापों के द्वारा वो कहते हैं कि निकलो यहाँ से, ये आपके रहने की जगह नहीं है। आदि आत्मिक ताप मतलब शरीर और मन के द्वारा होने वाले ताप, कभी मन ठीक नहीं है, चंचल हो रहा है, कभी शरीर ठीक नहीं है, ये आदि आत्मिक ताप है। आदि भौतिक ताप मतलब जब हम किसी और से पीड़ित होते हैं, जैसे कोई हमारा नेबर होता है, या कभी कोई साधारण दूसरा व्यक्ति होता है, या कोई पशु होता है, कोई कीड़े होते हैं, कोई मच्छर काटता है, ये आदि भौतिक ताप है, इनके द्वारा व्यक्ति त्रस्त रहता है। और तीसरा जो है आदि दैविक मतलब बहुत ही गर्मी है, बहुत ही ठंडी है, बहुत बारिश है, भूकंप हो रहा है, सुनामी हो रहा है, इसको कहते हैं आदि दैविक ताप। तो आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि आत्मिक ताप, ये त्रिशूल के द्वारा जो है दुर्गा माता जो क्या करती है, उसको टोकते रहती है, कहते कि अरे क्यों इस संसार में सड़े पड़े हो यहाँ पर, निकलो यहाँ से। क्योंकि भगवत धाम जो है ये कैसा है, चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षारुतेश सुरभिरभि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि प्रखर सद्मसु, वहां पर हर एक कण कण जो है चिंतामणि है, जैसे हम लोग पारसमणि स्पर्श करते लोखंड का सोना हो जाता है, तो वैसे चिंतामणि है एक, हर एक जो भगवत धाम है वहां पर चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्ष, प्रत्येक वृक्ष जो है कल्प वृक्ष है, यहाँ पर भी कल्प वृक्ष है। आप जब वृंदावन बिहारी के सामने खड़े हो जाते हैं और एकदम सामने और ऊपर जब देखते हैं वहाँ पर कल्प वृक्ष बना हुआ है, तो वहाँ नीचे खड़े रहकर आप वृंदावन बिहारी को देखते देखते जो भी मन में इच्छा करेंगे कि हे भगवान मुझे आपकी कृपा दो, तो कृपा की वर्षा होती है वृंदावन। अभी जब आरती शुरू होगी तो आप जाना वहाँ पे, ऊपर देखना कल्प वृक्ष बना हुआ है, कल्प वृक्ष के नीचे। तो वैसे वहाँ भगवत धाम में क्या है, कल्प वृक्ष, हर एक वृक्ष जो है कल्प वृक्ष है, हर एक गाय जो है सुरभि गाय है। तो ऐसे और लक्ष्मी, हम लोग इस संसार में लक्ष्मी को इतना चाहते हैं, लक्ष्मी पूजन होता है ना दिवाली में, तो हम लक्ष्मी का फोटो रखते हैं, कुछ नोट का बंडल रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, और सारा दरवाजा खिड़की खुला करके रखते हैं कहीं से तो अंदर आ जाए तो लेकिन वैकुंठ में क्या है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमान, ऐसे सहस्त्र लक्ष्मी जो है क्या करे, झाड़ू लगा रही है विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा ये वैकुंठ धाम है, वहां पर बोलना मतलब गाना है, चलना मतलब नृत्य करना है। तो दुर्गा देवी त्रिशूल के द्वारा टोकती है, तीन ताप के द्वारा टोकते रहते, कहते कि क्यों पड़े हो यहाँ पर, क्या ये मूर्खता है, मैं मेरा मेरा यहाँ पर करते करते कितने जीवन बिता दिए, 84 लाख युनिया जो है आपने यहाँ पर बिताई है, अभी तो मनुष्य जन्म प्राप्त, अभी तो निकलो, अभी तो निकलो, क्योंकि कब तक यहाँ पर दुख भोगते रहोगे। हर योनि में जाते हैं तो हमारे प्रियजनों का विरह हमें सहन करना पड़ता है, किसी का देहांत होता है, दुनिया में सबसे बड़ा शोक जो है जब हमारे प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर जाते, सबसे बड़ा शोक होता है, दुख होता है, जीवन भर कभी कभी व्यक्ति भूल नहीं पाते हैं। और ये खाली मनुष्य योनि में नहीं, हर एक कोने में अपने परिजनों को छोड़ने का दुख होता है। कुत्ते का अगर छोटा बच्चा मर जाता है किसी गाड़ी के नीचे, तो कुत्तिया जो है महीना भर वो जो है गाड़ी के पीछे भौंकते रहते हैं। गाय पागल सी हो जाती है अपने बच्चे को छोड़कर। तो हर योनि में जो है दुख से गुजरना पड़ता है। तो दुर्गा देवी जो है त्रिशूल के द्वारा, ये तीन तापों के द्वारा जो कहते हैं कि निकलो यहाँ से, ये रहने की आपकी जगह नहीं है। आपका जो धाम है ये कौन सा है? भगवत धाम है, वैकुंठ है, कृष्ण लोग जो है आपके रहने की सही जगह है। इसलिए देखो, हम जब देहांत होता है, देहांत के बाद जब व्यक्ति जब जीवित रहता है, तो मैं कहते हैं हम वाड़ावासी है, हम लोग बंबई वासी है, हम यहाँ से वहाँ से हैं। लेकिन जब डेथ होने के बाद हम लोग फोटो बनाते हैं ना, तो नाम के आगे क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी लिखते हैं, कैलाशवासी लिखते हैं, वहाँ पे वाड़ावासी या बंबई वासी नहीं लिखते क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी या वैकुंठवासी लिखते। मतलब हम लोग का शाश्वत जो जाने का गंतव्य स्थान जो है वैकुंठ है, गोलोक धाम है। तो दुर्गा देवी जो है कहते हैं निकलो, आपका जो धाम है हे आमी जातो आमचा गावा आमचा राम राम घ्यावा। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हम हमारे गांव जा रहे हैं, ये तो हम लोग 50-60-100 साल के लिए मेहमान है यहाँ पर, लेकिन हमारा गांव जो कौन सा है? वैकुंठ है, गोलोक धाम जो है हमारा शाश्वत गांव है, वहाँ हमें जाना है। इसलिए देखते हैं कि देवी दुर्गा माता जो है बड़ी प्रसन्न होती है जब उनके पास कोई जाकर भगवत भक्ति मांगता है। एक अंतिम छोटी सी कथा है, उसमें चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि चंडीदास जो है चैतन्य महाप्रभु के समय, एक चंडीदास करे बड़े महान कवि हो गए। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद भी उनका काव्य पढ़ते थे, कविताएं पढ़ते थे। तो चंडीदास जो है पहले उनके नाम से पता चलता है कि वो किसके भक्त थे, पहले चंडी देवी के भक्त थे। चंडीदास जो है देवी के बड़े महान भक्त थे, तो बहुत ऐश्वर्य से बड़े प्रेम से लगाव से उनकी पूजा अर्चा क्या करते थे चंडीदास। एक दिन हुआ क्या कि उनके जो छोटे भाई थे वो शालिग्राम के पुजारी थे। छोटा भाई जो था उनका, शालिग्राम मतलब स्वयंभू विष्णु है, जो गंडक के नदी में स्वयं कृष्ण शालिग्राम के रूप में प्रकट प्राप्त होते हैं। तो शालिग्राम के पुजारी थे, लेकिन उनके पास ज़्यादा ऐश्वर्य नहीं था, ज़्यादा मतलब उनके पास कोई न तो जमीन था न तो कोई पैसा था, लेकिन भगवान विष्णु की बहुत बड़ी पूजा करते थे, प्रेम से पूजा करते थे। तो एक दिन जब वो पूजा करने गए तो उनके पास फूल भी नहीं था भगवान को अर्पण करने के लिए, शालिग्राम को विष्णु को अर्पण करने के लिए। तो सोच रहे यहाँ वहाँ देखा, तो उन्होंने देखा कि सामने जो बगीचा है उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, लेकिन वो बगीचा किसका था गार्डन? वो चंडीदास का था, जो काली का भक्त था, तो बड़े भाई का था। तो पूरा गेट लॉक लगा हुआ है, अंदर तो जा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने शालिग्राम के सामने खड़े रहकर मन में ही प्रार्थना की, पर फूल को देखना, सुंदर गुलाब का फूल फुला हुआ है वहाँ पर। तो सुंदर फूल को देखकर शालिग्राम से कहते हैं कि भगवान वो जो बगीचा में फूल है उसको कृपा करके आप स्वीकार कर लो। वो अंदर गए नहीं, वहीं से शालिग्राम की ओर से देखकर फूल को देखकर, अभी हमें नहीं करना चाहिए ऐसा कि चलो अभी पूजा के लिए कुछ नहीं है तो यहीं से पूरा मार्केट ऑफर कर देते, चलो जितनी भी अगरबत्ती भगवान आप ले लेना या जो भी किचन में बना हुआ नहीं बना हुआ आप ले लेना, तो हम लोग का वो स्तर नहीं है। लेकिन हमें खुद होकर प्रयत्न करके सेवा करनी चाहिए प्रेम से। लेकिन यहाँ पर वो जो है इतने बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने वो फूल अर्पण कर दिया। और थोड़ी देर के बाद चंडीदास आए, उन्होंने गार्डन का दरवाजा खोला, काली का सुंदर अभिषेक किया, वस्त्र परिधान करे, अलग अलग अलंकार उनको अर्पण किए। और जब आरती करने फूल लेने गए तो देखा बगीचा में बहुत सुंदर फूल थे, उसमें सबसे सुंदर फूल था जो भाई ने पहले ही अर्पण किया था शालिग्राम को, लेकिन उनको पता नहीं था। उन्होंने वही फूल तोड़ा और जाकर चंडी देवी को, काली को अर्पण किया। जैसे देवी को अर्पण किया तो जो मूर्ति थी माँ काली की, वहां से आवाज आया, हे वत्स, मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूं, वर मांगो, आपको क्या चाहिए? तो यहाँ वहाँ देखा है आवाज कहाँ से आ रहा है, बोलते तो ये तो देवी हंस रही स्माइल कर रही है और उससे कह रहे कि वत्स वर मांगो। तो बोले कि मैं 40 साल से इतनी आपकी सेवा कर रहा हूँ, कभी आप इतने प्रसन्न नहीं हुई, आज क्या मैंने क्या आप इतने प्रसन्न हो गए, क्या रहस्य है? तो कहते हैं कि हे चंडीदास, आज तूने मुझे मेरे स्वामी का प्रसाद अर्पण किया है, मेरे स्वामी का प्रसाद आपने मुझे दिया है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। बोले तुम्हारे स्वामी का, मैं तो आप ही मेरे स्वामी नहीं है, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये आपका भाव ठीक है, लेकिन मेरे लिए मेरे स्वामी है, मेरे स्वामी जो है भगवान विष्णु है, कृष्ण ये मेरे स्वामी हैं। और आज तुम्हारे भाई ने जो फूल शालीराम को अर्पण किया था, विष्णु को अर्पण किया था मन से, वही फूल आपने मुझे अर्पण किया है, और जो मेरे स्वामी का प्रसाद जो मुझे मिला है उससे मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, इसलिए आप वर मांगो। तो कहते हैं चंडीदास, अगर थोड़ा सा एक फूल प्रसाद अर्पण करने से अगर आप इतनी प्रसन्न हो तो क्या मैं विष्णु की भक्ति करो तो आप प्रसन्न होगी? तो देवी कहते हैं यही तो मेरे जीवन का, मेरे भक्तों के प्रति मेरे जो प्रेम भाव है, मेरा अंतिम लक्ष्य यही होता है कि सारे जीव जो है, जो मेरे भी भक्त है, सारे सृष्टि के जो जीव है, ये भगवान के चरणों में पहुंचे। क्योंकि हम जो है आपको ज्यादा से ज्यादा भौतिक संसार की सुविधाएं दे सकते हैं, सारे देवता क्या कहते हैं, हम आपको इस संसार की सुविधा, आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, कुछ अच्छा कोई पैसा, ये सब हम दे सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु से जो मुक्ति है वो हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए वो जो और जो जीवात्मा है उसको जो मुक्ति है, चीर शांति जो होती है, वो खाली भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद ही मिलती है। इसलिए हम कोई पीछे पड़ता है कि ये दो वो दो, तो हम कभी कभी दे भी देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी होती है जब कोई मांगता है कि हमें आपको जो अच्छा लगता है वो दो, तो आपको हमको अच्छा लगता है आप भगवान की भक्ति करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार माता देवी जो है जब कोई उनके पास भगवान की भक्ति मांगता है तो बड़ी प्रसन्न होती है। और इस प्रकार से हम जो नवरात्रि उत्सव है इसमें हम माता देवी को प्रणाम करना, उनको हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें भगवान का जो हरिनाम है, भगवान की ओर जो श्रद्धा है उसको दृढ़ करने में मदद करें। बाकी जो उत्सव है उसमें गाना है, नाचना है, प्रसाद पाना है, ये सब तो ठीक है, वो तो है, लेकिन साथ साथ हमें उत्सव किस लिए मनाते हैं कि हमारी भक्ति में प्रगति हो, इसके लिए जो उत्सव जो है हमें वैदिक शास्त्रों में दिए गए हैं। तो क्योंकि जीव का स्वभाव है सच्चिदानंद, आनंद प्राप्त करना हमारे जीव का स्वभाव है, लेकिन इसलिए इतने सारे उत्सव जो वैदिक संस्कृति में हर 15 दिन में हर महीने में कोई ना कोई उत्सव आता है, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग उत्सव भूल रहे हैं, कैसे मनाने वो पता नहीं होता है, इसलिए पार्टियां शुरू हो गई, सैटरडे पार्टी, वीकेंड पार्टी, संडे पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिटायरमेंट पार्टी, सब पार्टी। क्यों? क्योंकि आनंद लूटना है, एंजॉय करना है, लेकिन सात्विक स्तर पे कैसे एंजॉय करना है उत्सव में वो धीरे धीरे भूल रहे, इसलिए हमें आनंद लूटने के लिए जो है पार्टियों की आवश्यकता। लेकिन एक्चुअली सत्व गुण में जो है या भगवान के संग में आकर ये जो उत्सव, इसलिए हम व्रत करते, उपवास करते हैं ना नवरात्रि में, उपवास भी करते हैं। उप मतलब श्रेष्ठ, वास मतलब साथ में रहना। तो कोई अगर उपवास करता है लेकिन पूरा दिन वो अपना टीवी देखते बैठता है या मोबाइल पे गेम खेलते बैठता है तो वो उपवास नहीं होता है, वो खाली उपवास ही हो गया, वो उपवास ही हो गया। उपवास मतलब, उप मतलब श्रेष्ठ, ऊपर श्रेष्ठ, वास मतलब उनके संग रहना, मतलब हम व्रत करना मतलब हमें भगवान की लीलाओं की चर्चा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, सत्संग करना है, मतलब वो सही में उपवास या व्रत होता है। नहीं तो हम लोग व्रत किया लेकिन गेम खेलते बैठ गए, टाइम पास करते बैठ गए, तो उपास व्रत हो गया। हो उपास नहीं, उपवास करना चाहिए। देवी को प्रसन्न जो अच्छा लगता है उनको प्रसन्न करने के लिए, हमें उनके संग में रहने के लिए, भगवान के हरिनाम करने के लिए हमें यह व्रत करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। धन्यवाद। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने हमें इतने अच्छे तरीके से कथा सुनाया, हमें उन्होंने उत्सव के बारे में, नवरात्रि उत्सव के बारे में कैसे शक्ति तत्व है उसके बारे में भी सुनाया, और हम उनका पारंपरिक रीति से 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद करना चाहेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हम आप सभी भक्तों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो अपना कीमती समय निकाल के इस संडे फिस्ट कार्यक्रम में आए हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी के चरणों में यह प्रार्थना करते हैं कि आज का यह दिन आपके उज्ज्वल कृष्ण भावनामय जीवन का एक शुभारंभ बने, और आप प्रत्येक रविवार इस कार्यक्रम में आकर हमें प्रोत्साहित करते रहे। इसके उपरांत अभी 12:30 बजे महाआरती होगा, और उसके बाद आप ललिता भवन में प्रसाद ले सकते हैं। तो जब हम इसके उपरांत 12:30 बजे जिसको भी कुछ सवाल है, आध्यात्मिक सवाल होंगे या फिर इस्कॉन के बारे में सवाल हो सकते हैं, हमारे भक्ति के बारे में सवाल हो सकते हैं, इसका उत्तर देने के लिए वहाँ पे श्रीमान आदिकेशव प्रभु है जो कि डॉक्टर है, जो आपके लिए आपके प्रश्न का सवाल के उत्तर दे सकते हैं। तो कृपया इसका हम फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
यशोमति नंदन ब्रजवरनागर गोकुलरंजन काना, यशोमति नंदन ब्रजवरनागर गोकुलरंजन काना, गोपी परायण धन मदन मनोहर कालियनमन विधाना, गोपी परम धन मदन मनोहर कालियनमन विधाना, अमल हरि नाम हमिय विलास, हरि नाम हमिय विलास, विभिन्न अमनुरंदर नवीनगर वर वंशीवदन सुवास, विपिन पुरंदर नवीनगर वर वंशीवदन सुवास, ब्रज जन पालन असुरकुल नाशन नंद गोदन रखवाला, ब्रज जन पालन असुरकुल नाशन नंद गोदन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत दशकर सुंदर नंद गोपाला, गोविंद माधव नवनीत दशकर सुंदर नंद गोपाला, यमुना तट चर गोपी वदन हर रस रसिक कृपा माय, यमुना तट चरा गोपी वसन हरा रास रसिक कृपा श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद यशोमति नंदन ब्रजजननागर गोकुल रंजन काना यशोमति नंदन ब्रजजननागर गोकुल रंजन काना कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने जय श्री कृष्ण जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौरव भक्तवृंद जय श्री कृष्ण जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare